ممكن هيك صوفي كهني ہے جس میں ایک ویکتی سو رہا ہے اور سوتے ہوئے وہ ایک سوپن دیکھتا ہے. اس سوپن میں بھگوان کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ بھگوان تم سے بہت خوش ہے, تم اتنے نیک دل ہو, اتنے ایماندار ہو, اس لیے بھگوان نے تمہارے لیے بخشش بھیجی ہے. اور سپن میں وہ ویکتی پوچھتا ہے اس فرشتے سے کیا بھیجا ہے, تو وہ فرشتہ کہتا ہے 10 روپے. وہ کہتا ہے 10 روپے, یہ تو اپمان ہے, تم بھگوان کی طرف سے آئے ہو کیول 10 روپے لے کر. اور وہ بڑھاتے بڑھاتے 20, 30, 40, 50, 90 اور 99 روپے تک پہنچتا ہے. اور جب 99 تک وہ پہنچتا ہے, اس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے 100 سے میں 1 روپے بھی کم نہیں لوں گا. تم بھگوان کی طرف سے آئے ہو, میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا بھگوان اتنا کنجوس ہے. تم ریپریزنٹیٹیو ہو, نمائندے ہو, تم بھگوان کو ریپریزنٹ کرتے ہو, کیسے لگتا ہے 100 روپے اور 1 روپے کے لیے تم آپ اٹک گئے ہو. اور وہ فرشتے سے زور سے بات کرتا ہے اور فرشتے کو چلاتا ہے, تب اس کی نیند ٹوٹتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ بستر پر ہے اور فرشتہ کہیں پر بھی نہیں ہے. تب اسے پشچاتاپ ہوتا ہے اور وہ پھر سونے کی کوشش کرتا ہے اور بلاتا ہے فرشتے, آ جاؤ واپس, آ جاؤ واپس, آ جاؤ واپس, آ جاؤ, میں 99 روپے میں ہی کام چلا لوں گا. پھر کہتا ہے 80 بھی ٹھیک ہے, 70 بھی ٹھیک ہے, اور کرتے کرتے 10 روپے تک پہنچتا ہے واپس اور معافی بھی مانگتا ہے کہ اے پربھو مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں کنجوس کہا. ویسے تو بھگوان کی طرف سے جو بھی آیا, جو بھی ملا, اسے تو پرساد بخشش ہی سمجھنا چاہیے. مجھ سے غلطی ہو گئی, پرندو جو سپنا آیا اور جو چلا گیا وہ پھر نہیں آتا, اور جو فرشتہ آیا تھا وہ آیا اور چلا گیا اور اب پھر نہیں آئے گا. ویکتی اوپر سے کتنا ہی دھرم میں ہو, دھارمک ہو, ادھیاتم میں آگے بڑھ جائے, پھر بھی بھیتر اچھائیں بنی رہتی ہے. یہ سوکشم اچھائیں, وہ ضروری نہیں کہ دھن کی ہی ہے, کوئی بھی. اور ہر اچھا اپنے ساتھ ایک بے چینی لاتی ہے, ہر ترشنا بے چینی کے ساتھ آتی ہے. بنا بے چینی کے کوئی ترشنا نہیں. ایک ہلچل, ایک بے چینی, اور یہ بے چینی اتنی گہری ہے یہ بے چینی وکاروں کو جنم دیتی ہے, اس لیے مارگ کٹھن مارگ ہے. من کا گہرا آپریشن کرنا ہے اس میں. اوپر اوپر کی صفائی ہم نے کر لی ہے, اوپر اوپر سے وکار نکل گئے, پر جو ڈیپ سیٹڈ وائسز وکار ہے ان تک پہنچنا उनको देखना इसके लिए स्वयं का अनुभव ही काम आएगा। सुनी सुनाई बात और पढ़ी पढ़ाई बात इसमें काम नहीं करेगी। खुद का अनुभव खुद ही गुजरना होगा कुछ गहरे अनुभवों से। स्वयं की भट्टी स्वयं लगाओ, स्वयं का शिविर स्वयं लगाओ। सार्वजनिक शिविर, सार्वजनिक भट्टी, सार्वजनिक तपस्या यदि व्यक्तिगत तपस्या में रूपांतरित ना हो तो वो केवल एक मनोरंजन मात्र रह जाएगा। एक वाणी का विलास, एक बुद्धि का विलास, ढेर सारे शब्द, ढेर सारी क्लासेस। इसलिए साधना तो अकेले की है, मौन की है और एकांत की है। बस यही दो मुख्य है, इन दो का आधार लेकर आगे बढ़ना है। और बहुत से अनुभव होंगे, बहुत सी बातें आएंगी। स्वयं के विषय में हम समझेंगे कि भीतर क्या छिपा है, भीतर कैसे कैसे राक्षस है, कैसे कैसे विकार है, कौन कौन सी हलचल, कौन कौन से भय, कौन कौन सी बेचैनी, एंग्जाइटी, पैनिक, अनसर्टेनिटीज, अनिर्णय की अवस्था है। ये करूँ या वो करूँ, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, बेचैनियाँ, परेशानियाँ ऊपर नहीं दिखाई देती पर भीतर है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का मार्ग ऑपरेशन का मार्ग है, डीप ऑपरेशन। जितना गहरा साइलेंस होगा और जितना गहरा एकांत होगा उतना ये ऑपरेशन गहरा होगा। और जब किसी पेशेंट को कोई पस हो जाता है, फोड़ा हो जाता है और उसको चीरा लगाते हैं तो क्या निकलता है? पस, वो पीप। तो मन को भी जब चीरा लगाएंगे तो भीतर से पीप निकलेगा, पस निकलेगा, जिसमें सूक्ष्म घृणा, सूक्ष्म नफरत, सूक्ष्म भय, कोई बचपन का इवेंट, कोई ट्रॉमा, कोई बहुत गहरी चोट, कोई अपमान, कोई कलंक उसमें छिपा है, वो सब बाहर निकलेगा। क्योंकि सेवाएं सब कुछ छिपा देती है, कवर कर देती है, सप्रेस कर देती है, मिटाती नहीं है। इसलिए आज की मुरली में बाबा ने योग, सेवा, संबंध, संपर्क इसकी गहराई से चर्चा की है। नया वर्ष है, आ रहा है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। भूमि की कमी है, पानी की कमी है, खटिया की कमी है, परंतु यज्ञ रक्षक खड़े हैं। मधुबन निवासियों की महिमा की है बाबा ने, शाबाश कहा, मेहनत की, प्रबंध किया, सब किया। नया वर्ष है, आ रहा है, पुराना जा रहा है, सबके मन में संकल्प है। बाबा के पास सब पहुंच गया, परंतु सबसे पहले क्या पहुंचा? लेटर, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, क्या पहुंचा सबसे पहले? संकल्प। तुमने यहां संकल्प किया और उस तक पहुंचा। यदि वो संकल्प इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, इतना निस्वार्थ है, परमात्मा प्रेम में लवलीन रहो, तो माया की आकर्षण समाप्त। स्लोगन आज का, इतना शुद्ध संकल्प। हमारे सभी संकल्प उस तक पहुंचते हैं। यदि उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ है, यदि उसमें निस्वार्थ भाव समाया हुआ है, उसमें विशुद्ध प्रेम समाया हुआ है, तो हमें अपने ही भीतर जाना है, स्वयं के ही माइंड का ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक, चीरा लगाना है और फिर देखना है क्या आता है। और घबराना नहीं है, ये क्या आ गया, बहुत सारी चीजें आएगी, माइलस्टोन्स, स्टेशंस, मुकाम से गुजरेंगे। जैसे जैसे ब्राह्मण जीवन आगे बढ़ते जाता है, बहुत सारे नए अनुभव जुड़ जाते हैं, बहुत सारी सच्चाइयाँ हमें पता चलती है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, यज्ञ के बारे में, विश्व के बारे में, भगवान के बारे में, मूल्यों के बारे में। बेहद में बुद्धि रखनी है, जैसे बाबा की बुद्धि नया वर्ष को नहीं देख रहे, नए युग को देख रहे, उसके लिए ये कौन सी बात है, आज और कल की बात है, क्योंकि वो निरंतर अनलिमिटेड में स्थित है, उसके लिए छोटी छोटी बातें वो नहीं देखता है। नया वर्ष उसके लिए, नया वर्ष देखते हुए क्या देख रहा है, नए युग, और तुम कौन हो, नए युग के अधिकारी आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, पूज्य आत्माओं से बाबा मिलने आए। तो आज की अव्यक्त वाणी कब की है, ये 2000 की 31 दिसंबर, शांतिवन, मेला लगा हुआ है, परंतु उस कुंभ के मेले से फिर भी ठीक है। बाबा ने कहा हजारों लोग आए हैं, भाई बहने आए हैं, और जब न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर जब होता है तब क्या होता है संसार में, लोग क्या करते हैं, रिजोल्यूशन, संकल्प, प्रतिज्ञाएं। यहां पर भी बाबा ने कहा, बच्चों ने क्या किया, बच्चों का प्रेम मिला, बच्चों की प्रतिज्ञा है, वो सब पहुंचा बाबा के पास। ये छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो बाबा ने कहा ये खेल कैसा है, आज और कल का। सारी सृष्टि चक्र को देखते रहना, उसमें हम कहाँ हैं, इतने छोटे से। सब कुछ कितना छोटा है, परंतु हम सृष्टि चक्र को भूल जाते हैं, इसलिए बड़ा दिखता है। तो बाबा ने कहा जो अनन्य बच्चे हैं, जो बाप को प्रिय है, उनके लिए, उनके लिए क्या भविष्य उतना ही स्पष्ट है जितना वर्तमान। इतनी क्लैरिटी ऑफ विजन स्वयं में लानी है कि सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे, और उसके लिए एक महत्वपूर्ण काम है, जो अतीत है, जो पास्ट है, उसमें जो कचरा है उसको साफ करना है। सभी जब भी मधुबन आते हैं, भट्टी के लिए आते हैं, सेवा के लिए आते हैं, या ऐसे ही आते हैं, तो स्थान पर आना, अर्थात इसको एक महान टर्निंग पॉइंट समझना है जीवन का। भगवान के घर में आए हैं, ये वो भूमि है जहाँ ब्रह्मा ने तपस्या की है, मम्मा ने तपस्या की है, आज मम्मा को भी याद किया है, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य, सभी दादियों ने यहाँ तपस्या की है, उनके वाइब्रेशंस, उनके बोले हुए शब्द। पैरासाइकोलॉजी में, साइकोलॉजी में एक शब्द आता है आकाशिक फील्ड, अर्थात 100 साल पहले यदि किसी ने कोई शब्द बोला है, ब्रह्मा के बोले हुए शब्द, आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाश में अभी है, उसको कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। वाइब्रेशंस रहते हैं, राम लक्ष्मण, वन में घूम रहे एक स्थान पर पहुंचते हैं। जैसे ही एक खंडहर सी जगह आती है, लक्ष्मण अंदर घुसता है और तुरंत विचार आते हैं उसके मन में, ये क्या कर रहा हूं मैं, वनवास मुझे थोड़ी मिला है, इसको मिला है, भाई को, मैं क्यों आ गया, मैं क्यों यहां सफर कर रहा हूं, मुझे तो राज भाग भोगना चाहिए। फिर वहां से बाहर आता है, फिर से विचार बदलते हैं, फिर अंदर जाता है, फिर नेगेटिव थॉट्स, फिर बाहर आता है। वो पूछता है श्री राम से, ये क्या हो रहा है। श्री राम कहते हैं, कई वर्षों पहले इसी स्थान पर, इसी खंडर पर दो राक्षस रहते थे, दोनों आपस में दुश्मन हो गए, आपस में लड़े और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। इस घटना को कई वर्ष हो गए, परंतु वो वाइब्रेशंस हेट्रेट के अब भी वहां है। तो निकृष्ट करने वाले ये लोग जो राक्षस है, वो भी अपने वाइब्रेशंस छोड़ते हैं। पुलिस के पास एक कुत्ता होता है, स्निफर डॉग, वो क्या करता है, सूंघता है, सूंघता जाकर चोर को पकड़ लेता है। एक चोर जो निकृष्ट कर्म कर रहा है, वो भी अपने वाइब्रेशंस छोड़ जाता है। तो सृष्टि की सबसे महान आत्मा है, सृष्टि का जो प्रजापिता है, वो जो संपूर्ण जगत की माँ है, वो और उनके द्वारा निर्माण की हुई वो महान आत्मा है, यज्ञ के आदि रतन, उन्होंने यहाँ तपस्या की है, उनके वाइब्रेशंस यहाँ नहीं होंगे, उनके बोल, उनके शब्द, उनके स्वप्न, उनका समय यहाँ बीता है। दिस प्लेस इज रिचार्ज्ड विद दोज डिवाइन वाइब्स। केवल हमें स्वयं को सेट करना है, ट्यून करना है। जैसे रेडियो का स्टेशन होता है ना, 108, 102, 105, जैसे ही बीच में अगर रखो कहीं तो खर 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 खर, बहुत ही कर्कश आवाज़ आता है, और फिर अचानक से जैसे स्टेशन मिलता है एकदम कोई गीत और आवाज़ सुनाई देता है। उसी तरह इस सृष्टि में जितनी भी महान आत्माएं आज तक हुई है, केवल इस यज्ञ की आत्मा ही नहीं, द्वापर से अब तक की जो भी आत्माएं, जो त्यागी थी, तपस्वी थी, वैरागी थी, देहभान से नितांत मुक्त थी, प्रभु प्रेम में डूबी हुई थी, महान श्रेष्ठ भगत थी या कोई सन्यासी थी, जैसे ही हम शरीर के भान से परे जाते हैं, हम उन सभी से जुड़ जाते हैं, उनके वाइब्रेशंस, उनके प्रकंपन हमें मदद करने लगती है। ये सारी कायनात, ये सारी सृष्टि हमारी मदद के लिए दौड़ती है। इसलिए किस स्थान पर मैं हूं, ये चिंतन, अभी कहां बैठे हैं, ये मेडिटेशन हॉल न मालूम कितनी बार यहां अव्यक्त बाप दादा आए हैं, अव्यक्त बाप दादा के बोल, वो शब्द आज भी हवाओं में है, परंतु हम क्यों नहीं पकड़ पाते, क्योंकि हम अपने ही वाइब्रेशंस में हैं। थोड़ा सा अपने वाइब्रेशंस, अपने चिंता, अपने विचार, अपना अतीत, अपने परेशानियां, अपना अपनी छोटी सी दुनिया से थोड़ा सा बाहर जाओ ऊपर, और ऊपर जाते ही फटाफट फटाफट हम कैच करने लगेंगे नए नए संकल्प, जैसे प्रकाशमणि दादी के लिए नए नए विचार, नए नए थॉट्स, नए नई सेवा की प्लानिंग, आज ये करना है, आज वो करना है। कहाँ से आते हैं ये सब, कहाँ से आते थे ये सब, क्योंकि चेतना इतनी शुद्ध थी, हायर कॉन्शियसनेस में थी, तो अपने आप नए नए विचार आते हैं। और इस मुरली में यही कहा बाबा ने, हर बात में नया क्या है ये सोचो, नवीन क्या करना है ये सोचो, पुरानी चाल छोड़ो, पुराने बोल छोड़ो, पुरानी आदत छोड़ो, पुरानी दुनिया का लगाव छोड़ो, पुरानी आदतें, पांच बातें इस मुरली में है। पुरानी आदत, पुराने बोल, पुरानी भाषा, ये बाबा को पसंद नहीं है, वो कमजोर करने वाले बाबा को पसंद नहीं, जो हिम्मत उत्साह बढ़ाने वाले साथी है वो साथी बाबा को पसंद है। तो पुरानी भाषा को बदलना, नई भाषा सीखना। स्पिरिचुअल, न्यू लैंग्वेज, न्यू पार्लांस, न्यू वर्ड्स, न्यू डिक्शनरी, न्यू थेसोरस, नई भाषा, नई चाल, नई आदतें, न्यू हैबिट्स, पुराने संस्कार। बाबा ने कहा एक बहुत सुंदर शब्द इस वाक्य इस मुरली में आया है, नए श्रेष्ठ संस्कारों का क्या करो, आह्वान। ये पांचों को छोड़ो, पुरानी आदतें छोड़ो, पुरानी दुनिया से जो लगाव है वो छोड़ो और क्या करो, आह्वान। और आह्वान करते समय एक विनम्रता का भाव हो, हे महान संकल्प सृष्टि के आ जाओ, तन्मय मनो शिव संकल्प मस्तु। इस सृष्टि में जो भी शिव है, तन्मय मनो शिव संकल्प मस्तु। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। जो अशुभ है उसका नाश करो और जो शुभ है उसका अभी श्री गणेश करो। शुभस्य शीघ्रम। तो आज की मुरली फर्स्ट पॉइंट जो सीखनी है वो कौन सी है, जो होमवर्क के रूप में है, वो है महान श्रेष्ठ संकल्पों का आह्वान, संस्कारों का आह्वान करो, उन संस्कारों का आह्वान करो। देवताओं को देखो और आह्वान करो कि ये देवत्व के जो संस्कार है मुझ में आ जाए। दादियों के चित्र देखते हो तो उन चित्रों को देखते हुए उनकी पूजा नहीं करनी है, उनको खुशी नहीं होगी उसकी पूजा कर कर, उसके ऊपर गीत बनाकर या वंदना कर कर। उन्हें खुशी कब होगी, जब वो करोगे जो उन्होंने कहा या उन्होंने किया। तो सबसे पहला काम महान श्रेष्ठ संस्कारों का आह्वान। और ये जो पांच है पुराने, सोचो कौन सी पुरानी आदत है। डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल टाइम वेस्ट कितना हो रहा है। भगवान तो सेकंड सेकंड की बात करता है, एक सेकंड भी वेस्ट ना हो, कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। फोन कॉल्स, फोन चैट्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल्स, सोशल मीडिया, इससे बात, उससे बात, इसको बताऊं, उसको बताऊं, किसको क्या बताना है, किसी से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यहां से किसको साथी बनाए, वो चप्पल या जूतों की जोड़ी छोड़कर यहाँ कोई भी परफेक्ट जोड़ी नहीं है, सब में प्रॉब्लम है। वो चप्पल या जूते बस वही परफेक्ट है, बाकी किसको साथी बनाओगे। ये मेरा साथी, ये मेरा दोस्त, ये सारी स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स कहीं ना कहीं फंसाती है और भ्रम उत्पन्न करती है। किसके साथ शेयर करोगे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं। जिसके साथ शेयर कर रहे हो वो भी सुन रहा है क्या, कौन सुनता है क्या उसको, वो अपने ही दुख दर्द में डूबा हुआ है। और सुन भी लिया तो कितना पकड़ पाएगा, कौन सी एडवाइस दे पाएगा। और इधर शेयरिंग ज्यादा, उधर शेयरिंग कम, इसलिए देहधारियों से इसलिए कहा पुरानी दुनिया से लगाओ, एक पुरानी आदत, दो पुराने संस्कार, पुरानी चाल, पुराने बोल, नए वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। और न्यू वर्ड्स के लिए मुरलियों का अध्ययन करना पड़ेगा, बाबा के जो शब्द है वो हमारे शब्द हो जाए। इस मुरली में बाबा ने वो भी कही है, मम्मा की एक बात जो मम्मा ने इशारे से कही, सीधी नहीं कही, डायरेक्ट नहीं कही, हंसते हुए कही, और वो कौन सी बात है, अलबेलेपन की। और कौन सा अलबेलापन हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, चलता है, ये अलबेलापन। इसलिए पहला काम क्या करेंगे आज की मुरली से, महान नए श्रेष्ठ संस्कारों का आह्वान, ये फर्स्ट स्टेप है। पहले तो कौन से श्रेष्ठ संस्कार है जो मुझ में नहीं है, वो देखो, ये नहीं है मुझ में, किसी और में है, मुझे लाने हैं। कैसे लाऊं? आह्वान करो, देखो उनको, वो आ रहे हैं किरणों के रूप में। एक मन में समा रहे हैं, आत्मा में समा रहे। तो वर्ष का एंड है, 31 दिसंबर है, अव्यक्त बाप दादा आए हुए हैं शांतिवन में, बहुत बड़ी सभा है, तूफान आया है, जगह कम है, तीन पैर पृथ्वी, खटिया की कमी है, पानी की कमी है, पर यज्ञ रक्षक है मधुबन निवासी, मेहनत की है, सबको खुश किया है। उस सभा में बाबा आए हैं, जब भी कोई मुरली पढ़ो तो पहले ये देखो ये कब की चल रही है, सृष्टि चक्र में ये कौन सा कालखंड है, इस डेट को हम क्या कर रहे थे, कौन सी जगह चल रही है। और अगर हम उस समय नहीं थे, यदि ज्ञान में ही नहीं थे, तो सोचो हम उस समय कहाँ थे और किस शरीर में थे। और अब ये सोचो कि मैं ये मुरली सुनते हुए पढ़ते हुए उसी समय उसी कालखंड में टाइम ट्रैवल बैक चले जाओ और वहीं बैठी हूँ, बैठा हूँ, कहाँ बैठे हो वो भी जगह देख लो और वहाँ बैठ के ये सुन रहा हूँ और फिर बाबा की मुरली चल रही है। तो बाबा अनन्य बच्चों को के लिए कहते हैं, जो अनन्य बच्चे हैं, जो स्नेही बच्चे हैं, जो मेरे प्रिय बच्चे हैं, उनके सामने भविष्य उतना ही स्पष्ट होता है जितना वर्तमान, क्योंकि अंदर कचरा कम है। बेचैनी अगर है अर्थात विकार छिपे हुए, विकारों का नाश हो जाना, विकर्म खत्म हो जाना, उसकी साकार में निशानी क्या है? बेचैनी कम, बेचैनी होती है। हम योग में बैठे हैं, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा मिनट, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट्स हो गया, कौन हमको उठाता है कि कौन कहता है उठो, हो गया यहाँ का, बेचैनी। हमें टाइम सेवा नहीं उठाती है, कौन उठाता है? अंदर की बेचैनी, बहुत हो गया ये। फिर अपने आप जाने लगता है, कब 7:30 बजेगा, कब 7:30 बजेगा, कब 4:45 बजेंगे, कब 4:45 बजेंगे। बेचैनी है। हाँ, सेवा में ठीक लगता है, क्योंकि सेवा में बाह्य मुक्ता है, और सेवा क्या कर देती, कवर कर देती है उस बेचैनी को। इसलिए योग बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए चिंतन मनन वो एक दूसरी अवस्था है, परंतु हमें अलग अलग स्टेशन से गुजरना है इस ब्राह्मण जीवन में। एक चिंतन की अवस्था है, एक योग की अवस्था है, अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो इस मुरली में नया वर्ष एंड हो रहा है, पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नया चालू हो रहा है, तो इसके बीच में ये चल रहा है। तो बाबा ने क्या चेकिंग की? खाते की, जमा का खाता, सेविंग कितनी है, सेविंग अकाउंट्स। तो तीन खातों में से तीसरा खाता कौन सा है वो कौन बताएगा? कर्म का, संबंध संपर्क। तो सबसे पहला खाता योग का, दूसरा खाता सेवा का, और तीसरा खाता संबंध संपर्क का। तो सबसे पहला योग, योग की परसेंटेज क्या है? वास्तव में योग तो वो है जो विकर्म को विनाश करे, अर्थात बीज रूप वाला, और रूरियान वो भी एक स्टेशन है, वो बाबा को सब सुनाना वो भी एक योग हो सकता है, दृष्टि लेना वो भी एक योग है, सकाज वो भी एक योग है, अशरीरी होने का अभ्यास करना वो भी एक योग है, परंतु वास्तविक योग एक ही है, बीज रूप, सीड स्टेज, ज्वालामुखी, वोल्केनिक, बिंदी बिंदी, बस। इसकी परसेंटेज कितनी है ये पूछा है इस मुरली में, और ये परसेंटेज बहुत कम है, साधारण। और दूसरी बात, इसकी निशानी क्या है प्रैक्टिकल जीवन में? बोल और चलन। कैसे? योग युक्त, युक्ति युक्त। केवल 2 बजे उठने से काम नहीं होगा फिर, चाहे कितना भी बैठे रहो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. योग अर्थात योगी अर्थात योग का जीवन में प्रभाव, मुरली में शायद योगी जीवन का वैसे कुछ आया है, योग होना होगा वो, योग का जीवन में प्रभाव. योग केवल रूरियान करना नहीं है, योग केवल देखना नहीं है, केवल दृष्टि लेना भी नहीं, योग मगन अवस्था है, अशरीरी अवस्था, सब भूल जाए यहाँ का, उस परसेंटेज को बढ़ाना है, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है. 1 घंटा बैठे पर अशरीरी बीज रूप कितना समय थे, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, वो जितना ज्यादा होगा और गहरा होगा उतना ही दिनचर्या पे असर होगा और वैसे बोल होंगे. नहीं तो योग तो है परंतु बोल वही है पुराने. तो ये सबसे पहली चेकिंग, इस खाते को बढ़ाओ. दूसरा खाता सेवा, इसका बहुत विस्तार से बाबा ने बताई है, तुमने सेवाएं बहुत की, वृद्धि बहुत की, प्लानिंग बहुत बनाई, सफलता भी बहुत प्राप्त की, पर उसमें कुछ चीजें चाहिए. सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है फल बल. बल फल बोला ना, बल कौन सा, दिल की संतुष्टि, हम स्वयं संतुष्ट हो उस सेवा से. अगर सेवा हमें संतुष्टता, वास्तव में क्या सेवा हमारे खुशी का आधार है या खुशी है इसलिए सेवा है, ये 2 अलग प्रश्न है. एक, खुश सेवा कर रहे हैं, खुशी मिल रही है तो सेवा खुशी का आधार. दूसरा, खुशी है इसलिए सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अगर सेवा खुशी का आधार है तो सेवा अगर छिन जाए, सेंटर अगर छिन जाए, ये नहीं वो, ये नहीं वो, भाषण देने की सेवा बंद, अब दूसरी सेवा करो, तो खुशी खत्म. कोर्स कराने की सेवा खत्म, अब किचन वाली सेवा करो, खुशी खत्म. या केवल पार्टियों को घुमाने की सेवा करो, खुशी खत्म. अर्थात वो सेवा से भी चिपकाव है. फिर एक खुशी है इसलिए सेवा कर रहे, आज ये सेवा कल वो सेवा, जो दी वो ठीक. तो सेवा में सबसे पहली बात है दिल की संतुष्टता. दिल का तीर दिल को लगता है, दिमाग का दिमाग को, दिल से सेवा करनी है. इसलिए सेवा करनी है कि हमने जो पाया है वो सब पाए, सबको ये परिचय मिल जाए. सारा संसार अज्ञान अंधकार में भटक रहा है, डूबा हुआ है, कितना दुख है संसार में, इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख. कई बार हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट होते हैं, इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, इतनी बेचैनी, इतना डर रहता है, इतना डर रहता है. पूरा परिवार बहुत अच्छा है, वो पति इतना अच्छा है, बच्चे इतना अच्छा है, सब इतनी केयर करने वाले, पर वो माता जी है, उसको इतनी इतना भय, इतना भय, इतना भय, ऊपर से कोई कारण नहीं है पर भय ही रहता है, बेचैनी होती है, पसीना आता है, आधी रात को उठती है, सारा पसीना पसीना पसीना, चेस्ट में पेन होता है. कितनी बार तो लेके आ जाते हैं हॉस्पिटल में आधी रात को, सब कराते, ECG कराए, सब नॉर्मल, और वहां पहुंचते कि ठीक, फिर वापस घर. ऐसी कोई जांच नहीं है जो छोड़ी है, सब कुछ करा के हो गया पर भेजे नहीं. कर्मों का बहुत सूक्ष्म हिसाब है. इस ज्ञान में आने से पहले हम कहीं बैठे थे ऐसे मेडिटेशन में कोई आश्रम में, और आधा घंटा 1 घंटा हो गया, पैर दुखने लगा. तो वो जो वहाँ स्वामी जी थे, तो हमने कहा क्या हो गया, उन्होंने कहा पैर दुख रहा है. बस 1 घंटे में पैर दुख रहा है, ज़रूर पैरों से विकर्म किए होंगे तुमने. अब साक्षी होकर देखते रहो उसको, दर्द को हिलना नहीं बिल्कुल। हमें पता नहीं इतने जन्मों में हमने क्या क्या कर्म किए हैं, और जानने की भी जरूरत नहीं है। बाबा ने एक शब्द में कह दिया, तुम्हारे सिर पर 63 जन्मों का बोझ है, पुण्यों का नहीं, पापों का, और उससे भी ज्यादा बोझ ब्राह्मण बनने के बाद जो किए हुए विकर्म है उसको भस्म करने के लिए तुम्हें ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए तो सबसे पहली बात दिल की संतुष्टता। हमने सेवा की, किसी को मार्ग बताया, कोई भटक रहा था, इस भाव से सेवा करनी। दूसरी, फल क्या है? सर्व की संतुष्टता, जो साथी है वो भी संतुष्ट। तीसरी बात, मेहनत, एनर्जी और समय बहुत लगाते हैं पर इतनी सफलता नहीं मिलती। अगली बात, मैंने किया, सेवा की और उसके बाद मैंने किया, ये भाव। ये क्या खाना है? कौन सा फल? कच्चा फल। सेवा तो की परंतु हर जगह क्या जोड़ा? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। इसको रिप्लेस करो डायमंड गोल्डन की से। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, शुभ भावना, शुभ स्नेह, इससे रिप्लेस करना है। और रोज की जो मुरली है उसको गहराई से पढ़ना है, ये सबसे मेन चीज है। नहीं तो पता कैसे चलेगा करना क्या है, और उसमें भी अव्यक्त वाणी है। तो मैंने किया, इसको क्या करना है? रिप्लेस। ये कच्चा फल है। ये सेवाओं के विषय में था। अगला, संबंध संपर्क। इसके लिए क्या कहा है? वो जो पूरा न्यू वर्ष का होमवर्क है वो इसी सब्जेक्ट के विषय में। क्या बनो? दाता। क्या बनो? अखंड दानी। क्या बनो? महादानी। क्या बनो? महासहयोगी। याद प्यार में कहा है, हिलना नहीं, अटल। देना, गुणों का दान करना। उदाहरण दिया, क्यों गुणों का दान करना या क्यों दानी बनना है, कारण क्या क्या है? सबसे पहला तो तुम दाता के बच्चे हो, तो मास्टर दाता हो। दूसरा, तुम्हारे जड़ चित्रों का उदाहरण क्या है? देवी देव, देने वाले। तीसरा, ब्रह्मा का उदाहरण, उसने दिया, इसलिए तुम भी दो। कश्मीर में एक बहुत बड़े संत थे कवि, जिन्होंने महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य है, उस पर टीका लिखी थी। पर वो इतने स्वाभिमानी और स्वावलंबी थे, किसी से कुछ नहीं लेते थे, और वो भी संसार के कोलाहल से दूर रहते थे। उनकी एक कुटिया, उनकी पत्नी, बस। प्रकांड पंडित थे परंतु सारा समय अध्ययन, पूजा पाठ और अपनी साधना में ही लीन रहते थे। कुछ विद्वान पंडित उनसे मिलने कश्मीर गए, और जब उनको पता चला उनके बारे में तो वो कश्मीर के राजा के पास गए और राजा से विनती की कि इनको कुछ दिया जाए। तो राजा ने कहा, मैंने कोशिश की थी पर ये कुछ भी लेने को तैयार नहीं है, पर आप कह रहे हो तो उन्हें कुछ धन, उन्हें कुछ जमीन, कुछ तो हम देंगे। तो वो ब्राह्मण आते हैं उसके घर के पास और उसको कहते हैं कि राजा ने आपके लिए भेजा है। वो जो विद्वान पंडित थे वो कहते हैं अपनी पत्नी से कि राजा ने ये हमारे लिए भेजा है, अर्थात अभी हमारे यहाँ रहने का समय समाप्त हुआ, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। और उसी पंडितों के बीच राजा भी भेष बदल कर आता है ब्राह्मण का। वो कहता है, माफ़ करना, ये लोग मेरे पास आए थे तो मैंने ही आपके लिए भिजवाया, परंतु अब मुझे मुझे पता है आप लेते नहीं हैं। परंतु वो राजा कहता है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसको स्वीकार करो तो, या आपको क्या चाहिए आप बताओ। तो वो पंडित जी कहते हैं, मुझे एक ही चीज़ चाहिए, आज के बाद यहाँ कभी मत आना, दैट इज द फर्स्ट, ये एक चीज़ कर दो मेरे लिए, और दूसरा मेरी साधना में जितना हो सके कोई विघ्न नहीं डालना। तो भारत ऐसे पुरुषों का महान आत्माओं का देश है, जो देना जानते थे उन्हें लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। दे देना 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 देना, बाबा ने कहा अखंड महादानी, अखंड महासहयोगी, अटल, देते जाओ देते जाओ, कोई कितना भी हिलाए हिलो नहीं। साथी किसको बनाओ? ऐसे लोग, दूसरे कहेंगे तुम तो मरते रहते हो, पर साथी ऐसे लोगों को नहीं बनाओ। किसको बनाओ? जो उमंग उत्साह बढ़ा, ऐसे लोग। तो आज की मुरली से फर्स्ट बात बताई, महान संकल्पों का, संस्कारों का आह्वान। दूसरा, योग में बीज स्थिति का अभ्यास करना है, सीट स्टेज का, ज्यादा से ज्यादा, और वो भी बैठकर जितना हो सके। और तीसरी बात, सेवाओं में कैसी सेवा करनी है? दिल से, निस्वार्थ, मेरे द्वारा नहीं तो किसी और के द्वारा। जैसे सुदेश बहन कहते हैं ना कि हम सब कौन है? नल है, ऊपर टंकी है, अब टंकी का पानी इस नल से आ रहा है, और नल कहने लगे मेरा पानी है, तो उस टंकी ने इस नल को चुना है। वो चाहता तो उधर बाजू वाले नल से भी दे सकता था, पर इस मुझे चुना है, इसकी खुशी है और उसका धन्यवाद। पर जब उसकी मर्जी हो वो उसको चुन लेगा। तो अभिमान कैसा, अहंकार कैसा। इसलिए अपनी सेवाओं से भी डिटैच्ड, अपनी सेवाओं से भी अटैचमेंट नहीं हो, आज ये तो कल वो दूसरी। तो तीसरी बात आज की मुरली से जो सीखनी है वो है सेवाओं के विषय में, और फिर चौथी, देना, दाता, दाता दाता दाता, इस संस्कार को कुट कुट के अंदर भरना है, कि मुझे लेने के संस्कार नहीं डालने। कौन से संस्कार डालने? देने के, देना ही लेना है। छोटे बाबा से पूछते हैं कि हमें बड़ों का क्या चाहिए, रिगार्ड चाहिए, तो बाबा का क्या उत्तर है? पहले तुम उनको रिगार्ड दो, तो देना ही लेना है, तो अपने आप मिलेगा। मांगो नहीं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा करना है, कुछ भी नहीं मांगो, अपने आप मिलेगा। क्या भगवान को हमारी आवश्यकताओं के विषय में पता नहीं है? क्या भगवान को ये नहीं पता कि मुझ में ये विशेषता है, ये कला है, और हम सोच रहे हैं मेरी विशेषता यज्ञ में कब लगेगी? इसका मतलब निश्चय की कमी है। उसे पता है किसको कब कहाँ कैसे यूज करना है, उसकी दृष्टि हर एक पर है। उसे पता है तुम किस डिपार्टमेंट में हो और पहले किस डिपार्टमेंट में थे और आगे किस में जाने वाले हो, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारे सभी जन्मों को जानता हूं, आदि मध्य अंत को जानता हूं। गीता में भी लिखा है ना, हे अर्जुन तुम्हारे कितने जन्म हो गए? तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। यू नो नॉट, आई नो। उसे पता है ये जो परिस्थिति आई है क्यों आई है, और जो परिस्थिति आ रही है, जो विघ्न आ रहे हैं, समस्याएं आ रही है। उस दिन भी कहा था क्लास में, पांडव भीष्म उस पे है, शैया पर हंस रहे हैं, हंस नहीं रो रहे, सॉरी, अर्जुन कहता है कृष्ण से, इनको भी दुख हो रहा है मरने का, इनकी भी इतनी आसक्ति। कृष्ण कहते तुम ही पूछो क्यों रो रहे। वो कहते मैं रो इसलिए रहा हूं कि तुम पांडव निरंतर स्वयं भगवान तुम्हारे साथ थे शुरुआत से, फिर भी तुम दुखी दुख सहते आए हो। पांडव पति निरंतर साथ है, फिर भी दुख छूटा नहीं, फिर भी हिसाब किताब छूटे नहीं, वो तो रहेंगे। मैं तुम्हारी खांसी ठीक करने नहीं आया हूं, तुम्हारा घुटने का दर्द ठीक करने नहीं आया हूं, मेरा एक ही काम है वो ही बताओ बस, ये सब चीजें मत सुनाओ। तो भगवान मिल गया मतलब ये सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये सारे चुकतू होंगे, और ये किस लिए चुकतू होंगे, हमें मजबूत बना रहे, शक्तिशाली बना रहे, अनुभवी बना रहे, मैच्योर्ड बना रहे। आने दो, कितनी भी बाधाएं आने दो। एक संत थे, वो अपने शिष्यों से कहते थे, उसके पास बहुत सूफी संत था, हजारों शिष्य थे, पर सब वो मुसलमानों में कुछ शिया थे, सुन्नी थे, वो शिया जो शिष्य थे उनको कहते थे जाओ सुन्नियों के प्रवचन में जाके बैठो, जो हिंदू थे उनको कहते थे मुसलमानों के प्रवचन में जाके बैठो, और जो विरोधी बातें हैं वो सुनो और फिर देखो तुम्हारी स्थिति कैसी रहती है। विरोधी मत, बीके हो उधर के सत्संग में जाके बैठो कि भगवान सर्वव्यापी है, कितना धीरज से बैठ सकते हो। हमारे 84 लाख योनियों की कहानी, शांति से बैठ सकोगे क्या? हमने कितने पशु योनि में जन्म लिए उसका एक एक वर्णन, और श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, ये सुन सकोगे? ये जब सुन सकोगे विरोधियों की सारी बातें शांति से, या कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, फिर भी नो रिएक्शन, तो समझना मैच्योरिटी की स्टेज अभी आ रही है। पहले वो झगड़े करते थे, अभी ज्ञान का वाद विवाद के झगड़े करते। कोई कोर्स में यदि उसको पूछो कि तुम कौन हो, और कहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो बस ऐसे टूट पड़ते उसके ऊपर अज्ञानी कहीं के। अब तुमको समझाएंगे हम आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है। वो 7 डेज का कोर्स हमारे अहंकार का प्रक्षेपण ना हो जाए, हर आत्मा को महसूस कराना है। किसका? उस परमात्मा की महसूसता। वो जो निशब्द है, वो जो विराट है, और शिवावा एक एहसास है, उस एहसास की महसूसता, एक परम अनुभूति है वो, उस अनुभूति की महसूसता। अपने ओपिनियन उस पर नहीं थोपने हमें, बस उसे अनुभव करा देना है, वो सब कुछ मान लेगा तुम्हारी हर बात, नहीं तो केवल प्रश्न और लड़ाई। तो देना है, क्या करना है? देना है। चाहिए नहीं किसी से, ना रिस्पेक्ट चाहिए, ना किसी से प्रेम चाहिए, ना किसी से सिंपैथी चाहिए, ना किसी सेंटर पर जाओ तो हॉस्पिटैलिटी हमारी देखरेख करे, देखभाल करे, हम बीमार है तो केयर करे, अटेंशन दे, हमें पूछे अभी सुबह बुखार था अभी कम हुआ कि नहीं, पूछते भी नहीं, देखते भी नहीं। कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, ना प्यार चाहिए, ना अफेक्शन चाहिए, ना एप्रिसिएशन चाहिए, ना एक्नॉलेजमेंट चाहिए, ना वस्तु चाहिए, ना सेल्वेशन चाहिए, ना पैसे चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए वो उससे मिलेगा, और उसको पता है, और वो अपने आप देगा। अगर वो नहीं दे रहा है तो राम जी की इच्छा, ठीक है। भक्ति में तो यही चला, पूरा आधा युग इसके आधार पर ही चला, वही सोई जो राम रचि राखा, उसकी इच्छा है तो ठीक है, अब उसकी इच्छा है तो क्या, ठीक है। वैसे यहां पर भी ड्रामा, हमें हिलना नहीं है, देते जाना है। तो ये अखंड महादान, ये एक बात। और क्या है इस मुरली में? हुक्मी हुकुम चला रहा है, मम्मा का एक स्लोगन। जब भी अलबेलेपन को खत्म करना है तो इस स्लोगन को मम्मा ने कहा याद, वो चलाने वाला चल रहे, चलते हुए चलाने वाले को याद करो, करावन हार को याद करो, वो चला रहा है, हम चल रहे, जिम्मेवारी उसको दे दी है। वी आर जस्ट कठपुतली। दादी जानकी ने टीचर्स की भट्टी में एक प्रश्न पूछा था, कौन हो तुम, सेवाधारी हो, निमित्त हो या कठपुतली हो? सीधा उत्तर मत दो जो है वो बताओ, कौन समझते हो स्वयं को, सेवाधारी समझती हो या फिर दूसरा क्या? निमित्त हूं। वो निमित्तपन का भी अभिमान आ सकता है, मैं निमित्त हूं, तुम थोड़ी हो, हटो बाजू में, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, मैं निमित्त हूं। निमित्त मात्र कहते हैं, बस कहने मात्र कहते हैं, निमित्त मात्र कहते हैं, मैं निमित्त हूं, बाकी निमित्त मैं हूं। सबसे ऊंची अवस्था ब्रह्मा कुमारी जीवन, ब्रह्मा कुमार जीवन की कौन सी है? इन तीनों स्टेशन से गुजरना है, पहले तो सेवाधारी, आगे निमित्त भाव, और आगे कठपुतली। हमारा कुछ नहीं है, उसकी सेवा है वो देखेगा। अंगद ने पाँव जमा दिया, रावण से क्या कहा? अगर पाँव हटा दिया तो सीता तुम्हारी, उसको क्या टेंशन, जिसकी पत्नी है सीता वो देखेगा। अब तो और क्या है आज की मुरली में? बाबा के पास कार्ड पहुंचे, कार्ड के रिटर्न में क्या दे रहे? रिगार्ड। और आज की मुरली में जो ओटेसो अर्जुन, ब्रह्मा का उदाहरण, ब्रह्मा ने केवल शिव बाबा को देखा, उसके अतिरिक्त और किसी को भी नहीं देखा। तो तुम भी सेम। अगला और क्या पॉइंट है? मनसा वाचा कर्मणा, मन से शक्तियां देनी। जब एकांत में बैठे हो सोचो, मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें पूरे विश्व में फैल रही है, चल रहे फिर रहे एकांत में शक्तियां फैल रही है, बस यही एक चिंतन। बोलो तो ज्ञान, व्यर्थ नहीं, नेगेटिविटी नहीं, किसी की निंदा नहीं, और कर्म से गुणों का दान, अखंड गुणदानी बनो, ब्रह्मा का उदाहरण। हम दूसरों को कैसे सिखाएं? अपने कर्मों के द्वारा। बोल से किसको सिखाएंगे? और ब्राह्मणों के लिए तो क्या कहा है, सहयोगी देना, इनको थोड़ी ना दान करोगे। तो ये ऐसी आज की गुणी थी। ऐसे यज्ञ रक्षक आत्माओं को, ऐसे प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, ऐसे परमात्मा प्रेम में लवलीन आत्माओं को, ऐसे माया के आकर्षण को समाप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे राज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे अखंड महादानी आत्माओं को, अटल महादानी आत्माओं को, गुणदानी आत्माओं को, ऐसे ऐसे नए संस्कारों का आह्वान करने वाली आत्माओं को, ऐसे पुराने दुनिया के लगाव को समाप्त करने वाली, पुरानी आदत को समाप्त करने वाली, पुरानी चाल को, पुराने बोल को, ऐसे योग युक्त, ऐसे युक्ति युक्त, हर बोल में हर चलन में, ऐसे ऐसे डायमंड चाबी, निमित्त निर्माण, निस्वार्थ शुभ भावना, शुभ प्रेम स्नेह वाली आत्माओं को, ऐसे 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 बीज रूप अवस्था, अच्छा, ऐसे रिगार्ड देने वाली आत्माओं को, ऐसे दुआ देने वाली आत्मा, दुआओं का खाता भी बोला एक जगह, दुआओं का खाता, संतुष्टता का खाता, बढ़ाने वाली जमा करने वाली आत्माओं को, ऐसे 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 लवलीन हो गया प्रसन्नचित आत्माओं को, ऐसे भविष्य और वर्तमान जिनके सामने स्पष्ट है ऐसी आत्माओं को, ऐसे अनन्य और ज्ञानी आत्माओं को, ऐसे 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 दृढ़ संकल्प करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाबा को कार्ड भेजने वाली, टेलीफोन करने वाली, ईमेल भेजने वाली, लेटर लिखने वाली आत्माओं को, और संकल्प करने वाली आत्माओं को, ऐसे हर बात में नया, हर बात में नवीनता लाने वाली आत्माओं को, नए वर्ष में नवीनता लाने वाली आत्माओं को, ऐसे महासहयोगी आत्माओं को, ऐसे ऐसे बड़ों को रिगार्ड देने वाली आत्माओं को, ऐसे नवयुग के अधिकारी आत्माओं को, ऐसे दिल का तीर दिल से लगाने वाली आत्माओं को, फल और बल प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे संतुष्ट हो गया, ऐसे ओटे सो अर्जुन आत्माओं को, ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्माओं को, ऐसे अलबेलेपन को समाप्त करने वाली आत्माओं को, हुक्मी हुकुम चला रहा, चलाने वाला चला रहा, ये याद रखने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रश्नों से पार रहने वाली आत्माओं को, ऐसे जमा का खाता बढ़ाने वाली आत्माओं को, ऐसे हो गया, ऐसे बहुत सारे सम्मान वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।